संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 3 मई 2024 के बुलेटिन की सुर्खियां। रफाह में इसराइल के संभावित सैन्य हमले से कत्लेआम होने की आशंका, संयम की अपील। गाजा में इसराइली हमलों में हुई भारी तबाही में मलबे में लगभग 10,000 शव दबे होने की आशंका। सूडान में युद्ध के कारण दारफूर क्षेत्र में खाद्य अभाव से भुखमरी का संकट। भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग से हो रहे हैं बड़े बदलाव। और जैज के जरिए एकजुटता बढ़ाने व समस्त भेदभाव मिटाने की भावना का जश्न। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। मोबाइल डिवाइसेस पर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN News। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत मामलों के लिए कार्यालय ओचा ने आगाह किया है कि दक्षिणी गाजा के रफाह शहर में इसराइली हमले से कत्लेआम होने और पूरे गाजा में जीवन रक्षक मानवीय राहत प्रयासों को गहरी चोट पहुंचने की आशंका है। यूएन एजेंसी के प्रवक्ता येंस लार्क ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर स्थित रफाह में किसी भी तरह के जमीनी सैन्य अभियान का अर्थ होगा वहां शरण लेने वाले 12 लाख विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए और अधिक पीड़ा व मौत। फिलिस्तीन क्षेत्र में WHO के प्रतिनिधि डॉ रिक पीपर कोन का भी कहना है कि रफाह में इसराइल के संभावित हमले से जानमाल की तबाही में भारी इजाफा होगा और लोगों को वहां से फिर से विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
Any operation will result in an additional humanitarian disaster on top.
डॉक्टर रिक पीपर कोर्न कह रहे थे कि इसराइल की किसी भी सैन्य कार्रवाई का नतीजा एक दीगर मानवीय आपदा के रूप में होगा जो कि पहले से ही मौजूद तबाही को बढ़ाएगी और इसराइल के संभावित सैन्य हमले से वहां मौजूद लोगों को भोजन पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं से भी बिल्कुल वंचित होना पड़ेगा। हमें लोगों के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में भी सोचना होगा। WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रिक पीपर कोर्न की चेतावनी। इस बीच ओचा का कहना है कि गाजा पट्टी में पिछले 7 महीनों से जारी युद्ध से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और मलबे के नीचे 10,000 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। इसराइली बमबारी में कई इलाके पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अब भी हवाई, भूमि व समुद्री मार्ग से इसराइल के भीषण हमले जारी हैं। ओचा ने फिलिस्तीनी नागरिक प्रतिरक्षा प्राधिकरण का हवाला देते हुए बताया है कि मलबे में दबे शवों को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है जिसकी एक बड़ी वजह बुलडोजर, खुदाई करने वाले उपकरणों और कर्मचारियों की किल्लत होना है। उधर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCWA ने कहा है कि गाजा पट्टी में युद्ध और अनवरत इसराइली बमबारी ने फिलिस्तीन के सामाजिक आर्थिक विकास को 20 वर्ष पीछे धकेल दिया है। गाजा युद्ध में फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। युद्ध का हर दिन बीतने के साथ गाजावासियों और सभी फिलिस्तीनियों पर युद्ध की विशाल कीमत बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में गाजा युद्ध के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। कॉलेज परिसरों से प्रदर्शनकारी छात्रों को सख्ती से हटाने के लिए कुछ मामलों में पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने की खबरें हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
गाजा युद्ध के विरोध में कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन शुरू हुए थे जिसके बाद ये कैलिफोर्निया, टेक्सास समेत अमेरिका के अन्य प्रांतों में स्थित विश्वविद्यालयों में भी फैल गए। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि उनके कॉलेज गाजा में इसराइल के सैन्य हमले और फलस्तीनी इलाकों पर उसके कब्जे को देखते हुए इसराइल से अपना निवेश हटाएं। विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस की कार्रवाई से लेकर बातचीत के जरिए सहमति बनाने तक अलग अलग तरीके अपनाए हैं। कई कॉलेज परिसरों में छात्रों को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की गई है। इस पृष्ठभूमि में यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने ध्यान दिलाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार समाज के लिए मूलभूत है, खासतौर से जब प्रमुख मुद्दों पर असहमति हो। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और कानूनी एजेंसियों द्वारा अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार होना चाहिए ताकि वो अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए खतरा न बने। वोल्कर टर्क ने चिंता जताई कि अनेक विश्वविद्यालयों में कानून एजेंसियों द्वारा जरूरत से ज्यादा गैर आनुपातिक ढंग से कार्रवाई की गई है। उधर यूएन की स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ इरीन हान ने यूएन न्यूज के साथ एक खास बातचीत में कहा कि गाजा संकट वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैश्विक संकट बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा युद्ध के विरोध और इसराइल के समर्थन में प्रदर्शनों के दौरान नफरत भरे संदेशों और भाषणों में उछाल देखा गया है, मगर जायज आवाजों को सुना जाना होगा और लोगों को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी होगी।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है कि सूडान के दारफूर क्षेत्र में भुखमरी टालने के लिए समय बीता जा रहा है। देश के उत्तरी दारफूर प्रांत की राजधानी अल-फशर में परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच झड़पों में तेजी आने से जरूरतमंदों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के प्रयासों पर असर हुआ है। पिछले वर्ष अप्रैल महीने में सूडान के सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच लड़ाई भड़क उठी थी, जिसके बाद से ही देश हिंसक टकराव की चपेट में है और मानवीय व संरक्षण संकट उपजा है। करीब 2.5 करोड़ लोग यानी सूडान में आधी से अधिक आबादी को सहायता की आवश्यकता है और 1.77 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। मानवीय सहायता मामलों के लिए यूएन कार्यालय ओचा ने सचेत किया है कि लड़ाई और सख्त पाबंदियों के कारण नाजुक हालात से जूझ रहे लोगों तक सहायता पहुंचाने का रास्ता सीमित है, जिससे ये संकट और गहरा हुआ है, विशेष रूप से दारफूर क्षेत्र में। भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। ई विन, यू विन और को विन जैसे डिजिटल मंचों की मदद से अभूतपूर्व गति से टीकाकरण संभव हुआ है। इस पहल की शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने अहम भूमिका निभाई है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर टीकाकरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बदलते परिदृश्य पर अंशु शर्मा की एक संक्षिप्त रिपोर्ट।
भारत में टीकाकरण के लिए डिजिटल तकनीक का ये प्रयोग स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक नई सहूलियत है, जिससे हर साल लगभग 2.70 करोड़ नवजात शिशुओं और 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को कुशलता से टीके लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी ईवन ऐप का उपयोग करते हैं। ईवन ऐप इलेक्ट्रॉनिक मंच पर वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी के लिए भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे टीकों की उपलब्धि, संग्रहण और देश के अंतिम कोने तक वितरण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी व गैवी द्वारा समर्थित ईवन ऐप भारत सरकार ने 2014 में शुरू किया था।
भारत स्थित यूनेस्को के दक्षिण एशिया कार्यालय ने अपने भागीदारों के साथ मिलकर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस पर एक संगीत समारोह आयोजित किया, जिसमें जैज के जरिए एकजुटता बढ़ाने व समस्त भेदभाव मिटाने की भावना का जश्न मनाया गया। एक संक्षिप्त रिपोर्ट सुनिए अंशु शर्मा से।
2011 में यूनेस्को ने रचनात्मकता, संवाद व अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाले एक शैक्षिक उपकरण के रूप में 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस घोषित किया था। तभी से अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस जैज संगीत की भूमिका के वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे यूनेस्को का उद्देश्य था सभी तरह के भेदभाव को खत्म करने की जैज की क्षमता को लेकर जागरूकता बढ़ाना, आपसी समझ व सहिष्णुता को बढ़ावा देना तथा शैली के भीतर कलात्मक नवाचार एवं समावेश को प्रोत्साहित करना। इस संगीत समारोह में दुनिया भर से आए कई प्रतिभाशाली संगीतकारों ने भाग लिया और विभिन्न देशों में लोकप्रिय जैज संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। नेदरलैंड, फ्रांस और पोलैंड के संगीतकारों से लेकर भारतीय कलाकारों के समूह तक सभी कलाकारों ने जैज के एक विविध व गतिशील संगीत अनुभव से रूबरू कराया। प्रसिद्ध जैज ड्रमर और संगीतकार तरुण बलानी ने गिटार वादक सिद्धार्थ गौतम के साथ मिलकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता संगीत प्रस्तुत किया। पोलैंड संगीत के दिग्गज कुबा वोजिक और पियोत्र दामसिक्विज के प्रदर्शन ने जैज की नवीन धुनें प्रदर्शित की, जिसमें स्थानीय संगीत के साथ ध्वनि मिश्रण के जरिए संगीत अभिव्यक्ति की सीमाओं को दीगर तराशा गया। कार्यक्रम के अंत में ध्रुव सांगारी, साहिल वासुदेव, सुहेल सईद खान, सिराज और अरीना की टीम ने साथ मिलकर संगीत पेश किया। ध्रुव सांगारी की प्रस्तुति में जैज संगीत में नई धुनों को मिलाकर भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाया गया।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।